मॉड्यूल 11.1 परंपरागत चिंतन भाग एक देशी अर्थशास्त्र। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके ही आर्थिक नीतियां बनाई जानी चाहिए। हालांकि इस बात का कहीं उल्लेख तो नहीं मिलता, पर आधुनिक अर्थशास्त्र में संभवतः आध्यात्मिक ग्रंथों का उल्लेख नहीं किया जाता। अध्यात्म उस जीवात्मा का नाम है जो इस देह को धारण करती है, और जब उसकी चेतना के साथ मनुष्य काम करता है तो उसकी गतिविधियां बहुत पवित्र हो जाती हैं, जो अंततः उसकी तथा समाज की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र उससे अपरिचित लगता है। इस देह के साथ मन, बुद्धि और अहंकार तीनों प्रकृतियां स्वाभाविक रूप से अपना काम करती हैं और मनुष्य को अपने अध्यात्म से अपरिचित रखती हैं। वैसे ही आज के सारे अर्थशास्त्री केवल बाजार, उत्पादन तथा अन्य आर्थिक समीकरणों के अलावा अन्य किसी तथ्य पर विचार व्यक्त नहीं कर पाते। कम से कम प्रचार माध्यमों में चर्चा के लिए आने वाले अनेक अर्थशास्त्रियों की बातों से तो ऐसा ही लगता है। कहीं शेयर बाजार, महंगाई या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा होती है तो कथित रूप से अर्थशास्त्री सीमित वैचारिक आधार के साथ अपना विचार व्यक्त करते हैं, जिसमें अध्यात्म तो दूर की बात, अन्य विषयों से भी वो अनभिज्ञ दिखाई देते हैं। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि आध्यात्मिक ज्ञान का कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो भी आज के अनेक अर्थशास्त्री अन्य राजनीतिक, प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय तत्वों को अनदेखा कर जाते हैं। यही कारण है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी तथा खाद्य सामग्री की कमी के पीछे जो बाजार को प्रभावित करने वाले नीतिगत, प्राकृतिक, भौगोलिक विषयों के अलावा अन्य कारण हैं, उनको नहीं दिखाई देते हैं। हम यहाँ आधुनिक अर्थशास्त्र की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित उन प्राचीन अर्थशास्त्रीय सामग्रियों को संकलित करने का आग्रह कर रहे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो नाम से ही प्रामाणिक है, जबकि चाणक्य नीति में भी आर्थिक विषयों के साथ जीवन मूल्यों की ऐसी व्याख्या है जिससे उसे जीवन का अर्थशास्त्र ही कहा जाना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार भी नैतिक शास्त्र का अध्ययन तो किया ही जाना चाहिए, जिनको जीवन मूल्य शास्त्र भी कहा जाता है। आज की परिस्थितियों में यही नैतिक मूल्य अगर काम करें तो देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप एक ऐसा आदर्श बन सकता है जिससे अन्य राष्ट्र भी प्रेरणा ले सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री अपने अध्ययनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुशल प्रबंध का अभाव एक बहुत बड़ा दोष मानते हैं। देश के कल्याण और विकास के लिए दावा करने वाले शिखर पुरुष नित्य प्रतिदिन नए नए दावे करने के साथ ही प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, पर इस कुशल प्रबंध के अभाव के दोष का निराकरण करने की बात कोई नहीं करता। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही इस दोष का परिणाम है या इसके कारण प्रबंध का अभाव है, ये अलग से चर्चा का विषय है। अलबत्ता लोगों को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से परे होने के कारण लोगों में समाज के प्रति जवाबदेही की कमी हमेशा परिलक्षित होती है। हम चाहें तो जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों की कार्य पद्धति को देख सकते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, ये बहस का विषय नहीं है। इतना तय है कि भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और लापरवाही से काम करने की प्रवृत्ति सभी में है। देश में फैला आतंकवाद जितना बाहरी आश्रय से प्रत्यक्ष आसरा ले रहा है, तो देश में व्याप्त कुप्रबंध भी उसका कोई छोटा सहयोगी नहीं है। हर बड़ा पदासीन केवल हुक्म का इक्का बनना चाहता है। जमीन पर काम करने वालों की उनको परवाह नहीं है। उद्योग और पूंजी ढांचों के स्वामी की दृष्टि में उनके मातहत ऐसे सेवक हैं जिनको केवल हुक्म देकर काम चलाया जा सकता है। दूसरी भाषा में कहें तो अकुशल या शारीरिक श्रम को करना निम्न श्रेणी का काम मान लिया गया है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता इस प्रवृत्ति को खारिज करती है। उसके अनुसार अकुशल या शारीरिक श्रम को कभी हेय नहीं समझना चाहिए। संभव है कुछ लोगों को श्री गीता की यह बात अर्थशास्त्र का विषय न लगे पर नैतिक और राष्ट्रीय आधारों पर विचार करें तो केवल हुक्म देकर जिम्मेदारी पूरी करवाने तथा हुक्म लेकर उस कार्य को करने वालों के बीच जो अहम की दीवार है वो अनेक अवसरों पर साफ दिखाई देती है। किसी बड़े हादसे या योजनाओं की विफलता में इसकी अनुभूति की जा सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका काम केवल हुक्म देना है और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, मगर वो कार्य को अंजाम देने वाले लोगों की स्थिति तथा मनोदशा का विचार नहीं करते, जबकि ये उनका दायित्व होता है। इसके अलावा किसी खास कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी तैयारी तथा उससे अन्य जुड़े मसलों से किस तरह सहायता ली जा सकती है, इस पर योजना बनाने के लिए जिस बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है वो शायद ही किसी में दिखाई देती है। सभी लोग केवल इस प्रयास में हैं कि यथास्थिति बनी रहे और इस भाव ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में जड़ता की स्थिति पैदा कर दी है। इसके अलावा एक बात दूसरी भी है कि केवल आर्थिक विकास ही जीवन की ऊंचाई का प्रमाण नहीं है, वरन स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वैचारिक विकास भी उसका एक हिस्सा है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। इससे परे होकर विकास करने का परिणाम हमारे सामने है। जैसे जैसे लोगों के पास धन की प्रचुरता बढ़ रही है, वैसे वैसे उनका नैतिक आधार सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में लगता है कि हम पाश्चात्य समाज पर आधारित अर्थशास्त्र की बजाय अपने ही आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित सामग्री का अध्ययन करें। वहाँ के समाजों पर आधारित पाश्चात्य अर्थशास्त्र अब हमारे ही देश के आध्यात्मिक ज्ञान पर अनुसंधान कर रहे हैं। यहाँ यह भी याद रखने लायक है कि हमारा आध्यात्मिक दर्शन केवल भगवान भक्ति तक ही सीमित नहीं है और ना ही वो हमें जीवन देने वाली उस शक्ति के आगे हाथ फैलाकर मांगने की प्रेरणा देता है, बल्कि उसमें इस देह के साथ, स्वयं के साथ ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिए अच्छे और बड़े काम करने की प्रेरणा भी है।